ओम ज्ञान दिमिरांद श्रीनारायण शलाक्य चक्षुरोन्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूत स्वयं रूपकदामयम् ददाति सपदान्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण सो अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे वो सातवें अध्याय में भगवान भक्ति के विषय में ज्ञान देना आरंभ किए हैं। पहले तो भगवान ने कहा कि किस भाव से किस तरह से तुम अपने मन को मुझ में आसक्त कर सकते हो और किस तरह से मुझ में तुम स्थिर हो सकते हो, इसका विधि मैं तुम्हें सिखाता हूँ, उसको सुनो, तत् सुनो, क्योंकि अधिक सुनने से हमारा विश्वास जो होता है वो दृढ़ होता है। हमने इसके विषय में पहले चर्चा की थी कि जितना आप अधिक देखते हो, जितना अधिक आप सुनते हो, उतना अधिक आपका विश्वास भगवान के प्रति दृढ़ होता जाता है। इसलिए कभी भी सुनने के लिए आलस नहीं करनी चाहिए। जब कभी भी सुनने का अवसर प्राप्त होता है तो सुनना चाहिए। बोलना अगर नहीं मिलेगा तो चलेगा, क्योंकि ऐसे भी नवदा भक्ति में पहला स्टेप सुनना है, बोलना बाद में आता है। तो कई बार हम भक्त लोग जो प्रचार करते हैं उन लोग को कहते रहते हैं कि अगर आप एक दिन लेक्चर देना चाहते हो तो आपको कम से कम दो तीन दिन सुनना चाहिए, तब आपका एक दिन लेक्चर देने से आपको पूरा फायदा प्राप्त हो सकता है। एटलीस्ट सुनने का प्रयास करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सुनता है वही अच्छा बोलता है, जो नहीं सुनता है वो बोल नहीं पाता है। अगर वो बोलना भी चाहे तो सफल नहीं हो पाता है। इसलिए प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने उनको दीक्षा दिया था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज दीक्षा देते समय प्रभुपाद को दीक्षा दे रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं अभय चरण को दीक्षा देना चाहता हूँ क्योंकि इनको मेरे लेक्चर सुनने में बहुत इंटरेस्ट है, ये बहुत ध्यान से मेरे लेक्चर सुनते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताया। और आप देखते हो परिणाम कि प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से श्रवण किया था उनके गुरु से, और बाद में फिर प्रभुपाद जब लेक्चर देना शुरू किए, बोलना आरंभ किए, तो इंटरनेशनल सोसाइटी बनी। प्रभुपाद प्रचार करने लगे, ऑफकोर्स प्रभुपाद तो पहले ही दिन से भक्तिदास सरस्वती प्रभावित थे, उसी समय से उनका इच्छा था, लेकिन जब उन्होंने अमेरिका में प्रचार आरंभ किया तो कैसी चीज आपको प्राप्त होती है। आप देखिए, कई बार हम लोग प्रभुपाद के लेटर्स को, प्रभुपाद के लेक्चर्स को, उनके ग्रंथों को, तात्पर्य को कई बार हम लोग सोचते हैं, उस पर मेडिटेशन करते, चिंतन करते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि इतना स्पष्ट, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना कॉन्फिडेंटली कोई व्यक्ति कैसे बता सकता है बिल्कुल, और जो वो बोलते हैं वही होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो स्वयं भगवान उनसे बुलवा रहे हैं, मानो भगवान उनसे लिखवा रहे हैं, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं मिलती। जैसे आज मैं सुन रहा था कि जब प्रभुपाद ने अमेरिका में प्रचार शुरू किया था तो एक स्टोर फ्रंट खरीदा था। स्टोर फ्रंट जानते हो आप क्या होता है? स्टोर फ्रंट अमेरिका में स्टोर फ्रंट बड़ा प्रसिद्ध होता है। स्टोर फ्रंट का होता है कि सड़क को फेस करते हुए दुकान, यहां पर आप सड़क को छू करके दुकान को, ये तो उसको स्टोर फ्रंट बोलते हैं। छोटा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, डिपेंड्स, जितना छोटा उतना कम भाड़ा, जितना बड़ा उतना ज्यादा भाड़ा, खरीद भी सकते हो आप। तो सेकंड एवेन्यू में प्रभुपाद ने ये स्टोर फ्रंट एक किराए पे लिया था उनके शिष्यों ने, और जो किराया था उसके लिए भी प्रभुपाद के पास तो पैसा नहीं था कि वो किराया दे पाए, मंथली जो रेंट होता है वो दे पाए। तो प्रभुपाद ने उनके शिष्य को कहा कि आप लोग अरेंज करो, तो वो अरेंज करते थे हर बार। उनके पास, उनके शिष्यों के पास भी धन नहीं था, हालांकि वो लोग, उनके पास धन था लेकिन वो सब कुछ छोड़ के आए थे घर पे, उन्होंने अपने फैमिलीज का एक रूप से देखो तो त्याग कर दिया था। तो कुछ लोग थे उनकी सहायता करने के लिए, लेकिन कोई गारंटी वाला नहीं था कि आज इस महीने को मैंने दिया तो अगली बार मैं दूंगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं था। तो ये, और फिर प्रभुपाद ने संस्था का स्थापना किया और लिखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। और फिर भक्त लोग सोच रहे थे प्रभुपाद अगले महीने का किराए का कोई हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, अगले महीने हमें किराया प्राप्त होगा कि नहीं ये भी हमें नहीं पता है, और आप यहाँ इस संस्था का नाम बता रहे हो अंतरराष्ट्रीय, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ इस कौन का संस्था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप सोचिए ये कैसे हो सकता है, कितना विश्वास से वो बता रहे हैं। और ऐसा रजिस्टर करवाया कि मेरे संस्था का रजिस्टर करो इंटरनेशनल सोसाइटी के रूप में। सोचो प्रभुपाद जी ने, और जब प्रभुपाद मायापुर आए थे तो मायापुर में एक छोटा सा घास का कुटिया, उतना छोटा जमीन खरीदा था प्रभुपाद ने बड़ी मुश्किल से, और वहां पर कोई सुविधा नहीं थी, वो तो स्टोर फ्रंट से भी छोटा था, अमेरिका के जो स्टोर फ्रंट उससे भी छोटा, और कोई सुविधा नहीं, और सांप भी आते रहते थे रात को, मच्छर भी बहुत थे, और बिल्कुल खेत के अंदर भी छोटा सा एक कुटिया बनाया था, ऐसी जगह पर जगह खरीदा था छोटा सा। और प्रभुपाद ने ये ऐलान किया उस समय जब कुटिया थी तब कि हमारी संस्था का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर होगा, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। और वक्त लोग सोच रहे थे कि ये कुटिया हमारी संस्था का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर होगा, और आज आप देख रहे हो कि 60 से अधिक देशों से लोग आ रहे हैं उस स्थान पर। तो और ये मंदिर बनाने की जब बात हुई थी मायापुर में, तो अम्बरीश प्रभु जो कि एंड्री फोर्ड के प्रपौत्र है, तो अम्बरीश प्रभु उस समय एकदम नए थे, बहुत ही ज्यादा शुरुआत था उनका, और प्रभुपाद ने उनको कहा कि तुम मायापुर में एक भव्य मंदिर बनाने का जिम्मेदारी लो और तुम ये कार्य करो, यू शुड डू इट, आपको करना चाहिए कार्य। और अम्बरीश प्रभु सोच रहे थे मैं कैसे, मैं मुझे कुछ आता भी नहीं, मैं धनवान पिता का बेटा हूं मैं, लेकिन इतने बड़े मंदिर का जिम्मेदारी मुझ पे सौंपा जा रहा है। तो पहले तो मना कर रहे थे, अंदर से नाना हो रहा था, प्रभुपाद को मना नहीं कर पाए कि नहीं प्रभुपाद गुरुजी का आज्ञा है, तो मना नहीं कर पाए, लेकिन वो सोच रहे थे कि अभी कैसे होगा वो तो भगवान ही जाने, ये कैसे इतना बड़ा मंदिर बनेगा। और आज सब कुछ जो प्रभुपाद बताया सब कुछ हो रहा है। अम्बरीश प्रभु को इतने सालों पहले बताया था, आज अम्बरीश प्रभु ही इसके चेयरमैन है, इस टेंपल के जो प्रोजेक्ट के चेयरमैन, वही चेयरमैन है आज, और यही इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, और ये इंटरनेशनल सोसाइटी भी बन गया। सोचिए ये सब कैसे हुआ, सुनने से, अच्छे से सुनो, ये प्रभुपाद हमें सिखाए अपने गुरु से, और पूरा खुल करके सुनना चाहिए। मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जब आप सुनते हो तो पूरा खुल करके सुनो, ब्लॉक नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पर, एक छोटा सा कहीं पर भी ब्लॉक हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कत आ जाती है ना, छोटा सा भी एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। जब सुनने के ही हमें अवसर प्राप्त होता है तो हमें पूरा मन, हमारा चेतना, बुद्धि सब कुछ उस जगह पर उस विषय के ऊपर स्थिर करके उसके ऊपर चिंतन भी करना है। ऐसा नहीं कि सुनना है बस सुन लिया, लेकिन सुनने के बाद हाँ पूछिए क्या कोई प्रश्न है। अच्छा प्रश्न का पूछने का था, मैं तो सोचा ही नहीं मैंने अपने दिमाग को कष्ट ही नहीं दिया, आपने जो बताया मैंने यस 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 करके रख दिया। लेकिन इस तरह से मत नहीं रखो, केवल यस करके छोड़ना नहीं है इसको। अब जब सुनते हो तो उस पर विचार भी करो, और जितना आपका नॉलेज है वो सारा नॉलेज उस पर यूज करो इस विषय के ऊपर। और फिर जब आपको यह अवसर प्राप्त हो कि पूछा जाए कि आप प्रश्न है तो पूछिए, हो सकता है कि आपको इसका उत्तर भी पता हो, लेकिन इस उत्तर को कंफर्म करने के लिए किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ये उत्तर को कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन फिर से पूछो। हो सकता है कि आप जो उत्तर जानते हो अधूरा था, हो सकता है कि आप जो उत्तर जानते हो उससे कहीं और एक पॉइंट भी था महत्वपूर्ण, या फिर आपके उत्तर का एंगल कुछ अलग था और उनका सोचने का एंगल कुछ अलग है, उनका दृष्टिकोण कुछ अलग है। इसलिए प्रश्न पूछना चाहिए, सोचना भी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। एक्चुअली लोग सोचते हैं कि प्रश्न पूछना मूर्ख का निशानी नहीं है, प्रश्न पूछना केवल वही लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करते हैं, सोचने का कष्ट करते हैं। तो इसलिए प्रश्न पूछना तो बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है, इट्स अ क्वालिटी थिंग। ऑफकोर्स अहमदाबाद में वो कल्चर अभी तक इतना फेमस नहीं हुआ है, लेकिन आप अहमदाबाद छोड़कर किसी और मंदिरों में जाओगे या विदेश के मंदिरों में जाओगे तो वहां पर तो लेक्चर के बाद आधा घंटा टाइम स्पेशल में रखा जाता है कि आप प्रश्न पूछिए। सो बाद में फिर भगवान ने कहा कि इसको सुनो, और मैं तुम्हें भी ज्ञान और विज्ञान, थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल, ये दोनों चीज में तुम्हें बताता हूँ, ये दोनों ज्ञान में आपको बताता हूँ अर्जुन। और ये जानने वाला व्यक्ति बड़ा दुर्लभ होता है क्योंकि सब लोग इसको समझ ही नहीं सकते। ब्रह्मा को भी जो दुर्लभ होता है, ब्रह्मा भी चकित हो गए थे ना, ब्रह्मा को कष्ट हो गया था, इंद्र ब्रह्मा सब कष्ट हो चकित हो जाते, समझ नहीं पाते। अरे इंद्र ब्रह्मा के तो छोड़ो, बलराम भी नहीं समझ पाए। जब भगवान, जब कृष्ण ने ग्वाल सखा, ये ब्रह्मा जी का जो लीला किया था ब्रह्मा विमोहन, तो उसमें सारे ग्वाल और सारे बछड़े कृष्ण स्वयं बने थे, बलराम को भी ये बात का पता नहीं था। बलराम देखने लगे ये हो क्या रहा है यहाँ पर, आज ऐसे तो रोज गैये चराने जाते लेकिन आज क्या हो रहा है, गैये अपने बछड़ों को देखकर के इतना दौड़ क्यों रही है, ऐसा क्या बात हो गया, ये अपने ये लोग अपने अपने काम धंधा छोड़ करके सब अपने अपने बच्चों के पीछे क्यों दौड़ रहे, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं, इसमें कुछ दाल में कुछ काला है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, क्या है कृष्ण बताओ क्या है यहाँ पर। तब कृष्ण ने कहा, पहले तो मैं मना किया, कृष्ण बोले कि नहीं नहीं वो तो उनका प्रेम है, वो तो स्वाभाविक है। फिर बोले कि नहीं नहीं तुम कुछ छुपा रहे हो। फिर भगवान ने कहा कि ये एक्चुअली ब्रह्मा जी आकर चोरी करके चले गए थे और फिर मैंने अपना एक्सपांशन किया। तब तक बलराम को भी नहीं पता था। आप सोचिए बलराम तो स्वयं नारायण है, लेकिन फिर भी कृष्ण, फिर भी कृष्ण है, उनको नहीं समझ सकता कोई साधारण व्यक्ति, उनको केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको समझने के, जो भगवान जिनको परमिट करे, ठीक है तुम समझ सकते हो, नहीं तो नहीं समझ सकता, उनका अप्रूवल लेना पड़ता है। मैं आपको समझ सकता हूँ, हाँ यस यू आर ऑथोराइज नाउ, तुम समझ सकते हो तो फिर आप समझ सकते हो, नहीं तो नहीं समझ सकते। तो उसका माध्यम क्या है, गुरु, गुरु के पास जाना पड़ता है, गुरु जी को कहना पड़ता है मेरा रिकमेंडेशन जरा भेजिए उधर, शायद रिकमेंडेशन हो। बहुत सारे आते हैं ना एप्लीकेशंस, तो बाद में फिर भगवान देखेंगे कि अच्छा ये गुरु, ये शिष्य का एक रिकमेंडेशन आया ये गुरु के माध्यम से, तो फिर सोचेंगे क्या करें, हाँ ठीक है समझने दो इसको, इट्स लाइक दैट।
तो हम हैं कैपेबल समझने
वो तो भगवान चेक करेंगे कि आप कैपेबल है कि नहीं।
तो अभी हम क्या कर रहे
हैं? अभी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति मुझे समझना चाहता है, वो तो देखते हैं ना कि ये समझना चाहता है, लेकिन हम समझने के लिए कौन सा तरीका यूज करते वो भी तो देखते हैं, कितना इच्छा है समझने के लिए वो भी देखते हैं, और फिर समझने के लिए जो सुविधा की आवश्यकता होती है वो भगवान सामने से भेजते, फिर गुरु भेजते हैं सामने से, वैष्णव भेजते हैं सामने से, जितनी जितनी आपकी इच्छा है वो सारी इच्छा अगर पूरी करने जैसी है तो करते जाएंगे, सारी इच्छाएं पूरी करते जाएंगे। अगर आप भगवान को कभी भी ऐसा लगा कि ये इच्छा पूरी करने योग्य नहीं, भी आप गिड़गिड़ाओ सिर पटको जो करना है करो, नहीं सुनना है तो नहीं सुनेंगे फिर। तो जैसे भक्त प्रयास करता है समझने के लिए, फिर भगवान सुविधा देते जाते हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि आप क्वालिफाइड नहीं है या आप नहीं कर सकते ये कार्य, ये नहीं सोचना, क्योंकि असंभव कार्य को संभव बनाने का काम ही तो कृष्ण करते हैं ना, बाकी तो हम लोग कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ मारकर, लेकिन जो असंभव कार्य है उसको संभव बनाने के लिए फिर कृष्ण चाहिए। एनीवे कोई भी कार्य करने के लिए कृष्ण तो चाहिए ही। सो फिर भगवान ने कहा कि मेरी प्रकृति का विषय मैं बताता हूं। एक प्रकृति है मेरी, है भौतिक प्रकृति, जिसमें 5 स्थूल है और 3 सूक्ष्म तत्व है, और एक प्रकृति है वो है मेरी जीव प्रकृति जो परा प्रकृति मानी जाती है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वही पूरा विश्व है। आप जो कुछ भी देखते हो ये सारा इसका ही कॉम्बिनेशन है, है ना? जैसे मेरा शरीर आप देख रहे हो, तो मेरे शरीर में जो आपको दिख रहा है वो सब स्थूल पदार्थ है, क्योंकि ये स्थूल पदार्थ में जो आप मूवमेंट देख रहे हो, आंखें बंद हो रही है खुल रही है, जीभ से आवाज निकल रही है, तो ये जितना भी मूवमेंट है वो आत्मा के कारण हो रहा है। अभी ये दो शक्ति मिलकर के मैं बन गया, एक रूप से देखो तो मैं मेरे शरीर के साथ, लेकिन जिसको मैं कहता हूं वो तो सेकंड चैप्टर में बता दिया वो कौन है, है ना? वो कौन है सेकंड चैप्टर में, कौन है मैं? हाँ वो आत्मा है। और जो शरीर है वो है टेक्स्ट नंबर 4, जो मेरा शरीर है वो 4th श्लोक है, वो भूमि रापना लगा, जिसके मेरी बात जो हो रही है वो है लिविंग एंटिटी 5वें श्लोक में, वो मैं हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, एक्सप्लोइट कर रहा हूं प्रकृति का, शोषण कर रहा हूं प्रकृति को, भोग करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं भोक्ता बनूं, मैं चाहता हूं कि मैं स्वामी बनूं, और स्वतंत्र होकर के मैं ही एकमात्र ईश्वर बनूंगा, जो कभी संभव है ही नहीं, ये अवस्था रहती है हमारी। जन्मों जन्म से युगों युगों से हर एक जीव यही सोच सोच करके शरीर जन्म लेता है और अंत में मर जाता है। क्या सोच करके? कि मैं स्वतंत्र होकर के भोग करूंगा और इस सृष्टि में से जितना रस निकलेगा वो सारा रस निकाल करके मैं एकमात्र भोक्ता बनूंगा। और इतना सोचते 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 इतने कितने जन्म निकल गए, कितने युग निकल गए, अनादि बहिर्मुख कृष्णे भुलिया जीव, अनादि बहिर्मुख। इसलिए फिर भगवान बताते हैं कि ये सारा जो कुछ भी तुम देख रहे हो अर्जुन, वो सब मेरा ही क्रिएशन है। 6th में पढ़ो,
सर्व सर्जायेला जीवनो उद्भव आ बन्ने शक्तिओ में रहेलो छे। આ જગતમાં જે કઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે એ સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ રૂપ મને જાણ।
હા, યહાં પર જો કુછ દેખ રહે હો ઉસકા સર્જન ઓર વિસર્જન એક હી વ્યક્તિ કરતા હૈ, ઇસલિયે આપકી સોચ મેં ભી એસા, આપકી કલ્પના મેં એસી કોઈ ચીજ નહીં આ સકતી જિસકા સર્જન ભગવાન ને નહીં કિયા હો। આપ એસી કોઈ ચીજ કી કલ્પના તક ભી નહીં કર પાયેંગે कि जिसका सर्जन भगवान ने ना किया हो। कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, आप कोई सपना भी ऐसा देखा नहीं आज तक आपने कि जिसके भगवान जिसके क्रिएटर ना हो, या फिर जो भगवान की शक्ति से बनता ना हो। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको भगवान डिस्ट्रॉय ना कर सके। कोई भी कोई शक्ति किसी का, कोई मारे कृष्ण राखे के राखे कृष्ण मारे के, जिसको बचाना है बचाने का प्रयास करके देखो। जिसको भगवान ने सोचा है एक बार खत्म करना है तो खत्म होगा ही, वो चाहे फिर वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वो शिव जी ही क्यों ना हो, वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र है। सो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये एक टर्म है, एक शब्द है। क्षेत्र का अर्थ होता है जैसे जिस स्थान पर बैठे हो वो एक क्षेत्र हुआ, स्क्वायर फुट, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, एक क्षेत्र हुआ। और क्षेत्र को कई बार शरीर के साथ उसकी तुलना की जाती है। और आत्मा जो है वो जानने वाला क्षेत्र दुनिया, इसकी पूरी चर्चा आएगी 13वें चैप्टर में, जो हम आपको सेकंड मॉड्यूल में उसकी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी केवल हम इतना जान सकते हैं इस माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से, कि कोई भी चीज भगवान की शक्ति से स्वतंत्र नहीं है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, भगवान की शक्तियां इतनी स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया, कितनी स्वाभाविक है भगवान की शक्तियां। मीन्स सोचने से होता है, सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती उनको, इतना स्वाभाविक है। अगर आप समझ लो कि आपको रात को 2:30 बजे समझ लो कि हरेश प्रभु रात को 2:30 बजे आपको उठाए, अपनी बेटी को उठाए, निश्चित आपको उठाए, फुल एकदम फुल कोमा में थे आप, सो रहे थे आप, और आपको नींद में से उठाया और उठाकर कहा कि ये लो मायापुर से प्रसाद आया है, तुम्हें अभी खाना है इसको रात को 2:30 बजे, आप पूरा इतना कोई होश नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी पिता है, पापा ने बोला है तो खाना तो पड़ेगा, है ना, उन्होंने कहा कि ये प्रसाद खाना है, तब ये आपका हाथ प्रसाद से लेकर के कहाँ जाएगा, हाथ में प्रसाद होगा, मुंह में जाएगा ना, आंख में जाएगा, कान में जाएगा, आप पूरे नींद में हो फिर भी जाएगा। इसको बोलते हैं स्वाभाविक ही, स्वाभाविक ज्ञान बलक। ये तो फिर भी इतना, लेकिन भगवान के तो सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप सारी प्रकृति अपने आप इच्छा से कार्य करती है। जैसे कहते हैं ना, गुरु की इच्छा को शिष्य, जो ए ग्रेड का शिष्य होता है, वो इच्छा को इच्छा करने से पहले समझ लेता है शिष्य कि गुरु जी अब नेक्स्ट ये इच्छा करेंगे, तो पहले ही समझ लेता है, तो वो बेस्ट डिसाइपल माना जाता है, फिर वो इच्छा के अनुसार कार्य करता है पहले से ही। इस तरह से शक्तियां जो होती है वो बेस्ट शक्तियां, क्योंकि भगवान की है, तो स्वामी की इच्छा करने से पहले ही वो कार्य कर देती है, वो इच्छा करने की आवश्यकता भी नहीं रहती भगवान को, इतना स्वाभाविक है भगवान की शक्ति। अभी नेक्स्ट श्लोक में भगवान इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहते हैं। पढ़िए।
हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है।
हाँ, ये एग्जांपल भगवान ने दिया, और श्लोक भी बड़ा अच्छा है। मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? मई सर्वप्रथम इदम सूत्रे मणिगणाय, मई प्रथम इदम सर्वम सूत्रे मणिगणाय। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मुझसे पर कुछ भी नहीं, आई एम द फाइनल लास्ट वर्ड इन रियलाइजेशन, लास्ट वर्ड, मुझसे ऊपर कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा ये भगवान से भी ऊपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीन चीज हमने सेकंड चैप्टर की जब चर्चा हुई तब हमने आपसे तीन स्टेजेस की बात की थी। भगवान का साक्षात्कार करने में तीन स्टेज होते हैं, स्टेज नंबर 1, फिर उसके एडवांस नंबर 2, उससे एडवांस नंबर 3। तो आप जानते हो उसको कौन से नाम से बुलाते हैं? ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये तीन स्टेजेस होते हैं भगवान को जानने के लिए। जो भगवान के प्रकाश ज्योति को निराकार के रूप में देखकर जानता है वो बहुत ही सिखिया नव सिखिया भक्त माना जाता है, फर्स्ट बिगनर। दूसरा सेकंड एडवांस थोड़ा सा वो है परमात्मा को समझने वाला, और अंत में कृष्ण लास्ट वर्ड भगवान, वो अंत में फाइनल वो कृष्ण। तो भगवान कहते हैं कि मुझसे पर कुछ भी नहीं है। कोई कहता है कि कृष्ण से ऊपर परमात्मा आते हैं या कृष्ण से ऊपर ब्रह्मा आते हैं या फिर कृष्ण तो आपके सामने आज है कल नहीं है, इस प्रकार से कोई सोचता है। राम है वो भी अवतारी अवतार लिए है, यहाँ तक कि कोई ये भी सोचता है कि कृष्ण से ऊपर नारायण है। क्यों? क्यों वो चार हाथ वाला है, इसलिए ये दो हाथ वाला है। बस कई लोग कंफ्यूज है इसके अंदर कि कौन पहला है। हाँ कंफ्यूजन तो है,
99% लोग भगवान श्री कृष्ण को
अवतार मानते हैं,
विष्णु जी का अवतार मानते
हैं। हाँ सही बात,
99.99%
यस, क्योंकि ये मायावाद के द्वारा फैला हुआ एक प्रोपेगेंडा है, और एक प्रसिद्ध वैष्णव संप्रदाय भी जो है ये भी इस प्रकार का प्रचार करते हैं, गलत नहीं है वो भी, दैट इज फाइन। अगर विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है एक रूप से देखा जाए, चार गुण महत्वपूर्ण है कृष्ण के,
एक बूंद है एक सागर है इतना अंतर है।
हाँ लेकिन शास्त्र के अनुसार चार गुण ऐसे हैं जो विष्णु और कृष्ण को अलग करते हैं। एक है भगवान का लीला माधुरी, भगवान का वेणु माधुरी, रूप माधुरी और भक्त माधुरी। ये चार गुण ऐसे हैं कि जो नारायण में नहीं है, बाकी कृष्ण और नारायण में केवल ये चार ही गुण ऐसे हैं कि जो भगवान को अलग करते हैं, लेकिन शक्ति में कोई अंतर नहीं है दोनों में,
क्योंकि एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए शक्ति तो चाहिए। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी एक विष्णु रूप में रहते हैं,
हाँ तीन विष्णु है,
लेकिन जो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है और शिरोदक्ष है विष्णु, ब्रह्मदक्ष है विष्णु और काफी अलग है, उन सबका जो सोर्स है
वो कृष्ण है,
तो बराबरी तो हो नहीं सकती है,
बराबर तो नहीं हो सकती, इसलिए तो चार चीजें अलग कर दी ना,
क्योंकि शक्ति भी बराबरी है। हाँ शक्तियाँ दी है उनको भी, भाई आप भी सब कुछ करो,
यस
यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट, बट फाइनली दी तो वहीं से आई है।
हाँ लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि ये तीन विष्णु से ऊपर वैकुंठ में भगवान नारायण के रूप में विराजमान है, तो वो इन सबके ऊपर माने जाते हैं। ये तो भगवान के द्वारा बनाया गया क्रिएशन है, लेकिन सारे ऐश्वर्य उनके है, विष्णु के सभी शक्ति और शक्तिमान सर्वज्ञान जो छह भगवद गीता में हमने सेकंड चैप्टर में भगवान की जो व्याख्या सुनी थी कि छह ऐश्वर्य होता है भगवान के, वो छह के छह ऐश्वर्य विष्णु में आपको दिखने को मिलेंगे, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से जो सुप्रीम डिग्री में आपको मिलेंगे वो है कृष्ण में। सौंदर्य में नो मैच, कृष्ण के साथ तुलना नहीं हो सकती। भक्तों में वो तो सखा कृष्ण के कंधे पे चढ़ सकते हैं, तो नारायण के कंधे के चढ़ने पे किसी की हिम्मत नहीं है, कोई नहीं कर सकता ये। फिर उनका वेणु माधुरी, ये वेणु बजाते हैं, वेणु किसी के पास है ही नहीं, एक ही बहन है इसी क्रिएशन में, वेणु वो भगवान अपने पास रखी है। और चौथा है लीला, लीला माधुरी
तो सब कुछ है।
हाँ तो मक्खन मक्खन भगवान चोरी करते, आज तक कभी ऐसा हिस्ट्री में नहीं पड़ा कि चार हाथ वाला चार हाथ से मक्खन खा रहा हो। नारायण नेवर सीन,
सारे काम करने वाले लोग हैं ना, इनको काम करना।
लेकिन वही घर से जब भगवान हाईकोर्ट का जज घर में रहता है तो बर्तन भी साफ करना पड़ता है, बच्चों के साथ घोड़ा भी बनना पड़ता है, लेकिन जब वही जज हाईकोर्ट का जज वहां पर बैठ जाता है तो सब उसको योर ऑनर करते, तो हाईकोर्ट का जज जो है वो नारायण है, और घर में आता है तो वो कृष्ण बन जाते हैं। यस
मैंने वही सुना था, आपने बोला ना, मैंने सुना है लेक्चर में कि विष्णु इज कृष्णा इन ऑफिस,
यस,
और कृष्णा जो है वो घर में कृष्णा है, जो ऑफिस में जाता है
yes.
तो विष्णु बन जाते हैं
yeah, तो उनके साथ लिमिट होती है।
हाँ और प्रभु जी आप बोल रहे हैं ना
कि प्रभु इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो लोग विष्णु की आराधना करते हैं वो भी श्रेष्ठ ही है, क्योंकि उनको भी जो गति प्राप्त होगी उनको भी सेम गति प्राप्त होगी। वैकुंठ लोग जो वापिस वो यज्ञपाना निवर्तन थे वो भी मतलब उनको भी वापिस जन्म।
मथुरा में नारायण वैकुंठ नारायण है, द्वारका में नारायण है, सब जगह नारायण, केवल वृंदावन में ही कृष्ण है। यह एक चीज है।
मुझे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा संदेह है।
हाँ पूछिए पूछिए।
मेरा संदेह है कि जब जब वो एक ही है तो फिर ये जो बालमुकुंद जो लास्ट में जब वही अकेले बच जाते हैं, वही अकेले रह जाते हैं, सब कुछ में फिर व्युत्क्रम रूप से सब समा जाते हैं जाके उन्हीं में। जब महाप्रलय होता है पूरी तरह से सारी सृष्टि में, तब नारायण भी उन्हीं के अंदर चले जाते हैं। अगर वही होते तो फिर नारायण उनके अंदर क्यों जाते?
हाँ एक्चुअली जो कारण समुद्र में सोए हुए जो है वो सारी सृष्टि को अपने आप में समेट लेते हैं, सारी सृष्टि को। और जब भी इसके सृजन की आवश्यकता होती है उस समय अपने वो सारी सृष्टियों को बाहर निकालते हैं।
वही कल्पारो विशेषाम में।
हाँ यस। लेकिन ये नारायण जो है कारण साई विष्णु, इनका आदि है, इनका जो मूल है वो है शंकरषण। और शंकरषण के ऊपर है बलराम, बलराम के ऊपर है कृष्ण।
तो अगर ऐसे देखा जाए तो ही कृष्ण सुप्रीम अथॉरिटी हो गए, उन्हीं के अंश रूप में ये सब विद्यमान है। मूल रूप में नहीं है।
नहीं मूल रूप में
नहीं है। अगर हम कहें कि विष्णु भगवान की, क्योंकि वो सतोगुण की पराकाष्ठा है, सारे गुण तमोगुण रजोगुण जाके सतोगुण में समा के और फाइनली व्युत्क्रम से ऐसे उल्टे चलते हैं। लेकिन फाइनली अगर देखा जाए तो वो भी भगवान श्री कृष्ण की सृष्टि के ही एक अंश है। जब वो अपना विस्तार करते हैं तो उनके हिस्से हैं। लेकिन मूल रूप से ये कुछ हद तक तो सही है कि ऑफिस में वो है, वो है। बट मुझे मेरा अपना अभी तक जो मैंने समझा है, जो भी मैंने थोड़ा बहुत सुना है, मैं अपना जो विचार कर रहा हूँ मेरे अनुसार कि वो उसके बावजूद भी उनके एक अंश ही है।
हाँ तो अंश ही है। तो उन्हें इसलिए उनको बोलते हैं शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि एते चांश कला पुंसा,
कृष्णस्तु
भगवान सा। अंश और कला ये दो है। जो डायरेक्ट अंश होता है उसको अंश बोलते हैं, जो अंश के अंश है उसको कला बोलते हैं। तो इसलिए कोई एकल ईश्वर कृष्ण आलसब भृत्य, एक ही कृष्ण ईश्वर है, आज सब भृत्य, भृत्य का अर्थ है दास। फिर वो नारायण ही क्यों ना हो, फिर वो बलराम ही क्यों ना हो, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्य। इसलिए नारायण को कृष्ण के दर्शन करना इच्छा था, नहीं कर पाए, तो उसके लिए ड्रामा करना पड़ा, ब्राह्मण के बच्चे को चुराना पड़ा। तो अर्जुन के माध्यम से फिर भगवान उसको लेने के लिए वहां पर गए, दर्शन देने के लिए। बस
मुझे तो जहां तक मैं इसको अभी तक विश्वास नहीं कर पाया हूँ कि ऑफिस में वो है। ऑफिस की बात ऐसी नहीं है कि ऑफिस में वो है। हाँ ठीक,
संचालन का काम करते हैं।
हाँ कार्य रूप में वो उस रूप में संपादन करते हैं कार्यों का, उनके सृष्टि का पूरा सब प्रबंधन करना है, लोगों को वैकुंठ भी भेजना है, उनका सबका अपना अपना हिसाब करना है। क्योंकि किसी के बस में नहीं है गोपाल जी के तरफ के विचार करने की, वहां पहुंचने की, जब तक उनकी कृपा नहीं हो। तो इसीलिए जो है जो ये कह देना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से वो सही नहीं है कि वो दोनों एक ही हैं, जैसे वो घर में है वो ऑफिस में है, ऐसा
वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। दीपार्चिरेव ही दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म। एक मोमबत्ती में से जब दूसरी मोमबत्ती प्रकट की जाती है तो पहली मोमबत्ती का जो प्रकाश होता है वही प्रकाश दूसरी मोमबत्ती का भी होता है, लेकिन फिर भी दूसरी मोमबत्ती को दूसरी ही बोली जाती है और पहली को हमेशा पहली ही बोली जाती है। इसलिए जब भगवान के जो श्वांश होते हैं, श्वांश में भगवान की सारी शक्ति होती है श्वांश, और हम लोग है वो विभिन्न अंश सेपरेटेड। इसलिए जो श्वांश होते हैं, चाहे वो रामचंद्र हो, नृसिंहदेव हो, ये सारे जितने भी स्वरूप है वो सारे भगवान के श्वांश है। अभी वही रामचंद्र अगर वो चाहे स्वयं रामचंद्र, तो क्योंकि वो कृष्ण के ही अंश है, इसलिए कृष्ण उस समय राम के अंदर प्रवेश करके वहीं पर कृष्ण खुद खड़े रह सकते हैं,
पूरी शक्तियां प्रदर्शित कर सकते,
आवश्यकता के अनुसार। जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि हवबलम में नरसिंहदेव का स्थान है, तो वहां पर हनुमान जी गए थे तपस्या करने के लिए, और तपस्या कर रहे थे राम 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 ऐसे तपस्या कर, क्षेत्र है नरसिंहदेव का, वहां पर उनका प्रकट हुआ था, तो वहां पर नरसिंहदेव प्रकट हुए, वो बोल रहे राम राम राम, बोले बोले नरसिंहदेव प्रकट हुए, तो बोले हाँ खोलो आके मैं आ गया, मैं आ रहा हूँ तुम्हारा राम आ गया। हनुमान बोले यहाँ तो ऐसे भी जंगल है, कोई ना कोई शेर आ जाता होगा। बोले तुम कौन हो भाई शेर, क्यों मेरी तपस्या भंग करते हो, जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी गदा उठाता हूँ। तो नरसिंह ने बोला अरे एक तो बुलाते हो मुझे, और जब मैं आता हूँ तुम्हें तो मुझे गदा दिखा रहे हो, मैं ही तुम्हारा राम हूँ। बोले तुम मेरे राम हो, कैसे तुम मेरे राम हो गए। तो फिर बताया अपना स्वरूप रामचंद्र, वही नरसिंहदेव, वही रामचंद्र बन के दिखाया, मैं ही राम हूँ। तो तुम राम हो तो फिर तुम पहले क्यों नरसिंह के रूप में आए थे। तो बताया कि एक क्षेत्र नरसिंहदेव का है, इसलिए मैं नरसिंहदेव के रूप में आया था।
प्रभु जी यहाँ देखे कि सबने सबको तो दिखा दिया, और कभी किसी ने कोई इतिहास में है कि गोपाल जी बन के दिखाया हो किसी ने अपने आप को,
आवश्यकता नहीं, ऐसा है नहीं। लेकिन भगवान इस सीमाओं से बंधे हुए नहीं है,
वो तो कुछ भी कर सकते
हैं। हाँ वो सीमाओं से बंधे, अगर वो राम, अगर वो पिलर में से नरसिंहदेव बन सकते हैं, तो फिर आप सोचिए कि वराह में से कृष्ण क्यों नहीं बन सकते।
पर ऐसा कुछ निकला नहीं है कभी,
हाँ, ऐसा शास्त्र में कहीं पर ऐसा इंसिडेंट है नहीं,
लेकिन कोई हो उन्होंने कहा हो कि मैं भगवान कृष्ण तो राम बन गए कई बार, उदाहरण है जो तुलसीदास जी के लिए बन गए, लेकिन गोपाल जी किसी के लिए नहीं बने, वो कोई नहीं बन पाया,
क्योंकि वो अवतार सब अवतार का सोर्स है,
क्यों वो परम सत्ता है। इसीलिए जो बराबरी की बात इसलिए है कि उन्होंने अपना इस रूप में आए और अपनी शक्ति दे देते हैं कभी कभी, जो भी कारण होता है,
लेकिन दो अलग लोग नहीं है,
क्योंकि उन्हीं के हिस्से है।
हाँ, और श्वांश है, विभिन्नांश नहीं है। श्वांश का अर्थ ये होता है कि वो व्यक्ति वही है, अगर कोई राम का पूजा करता है तो वो कृष्ण की पूजा करने के बराबर ही माना जाता है, क्योंकि वो एक ही अंश है, राम का ही अंश है,
इसीलिए तो हम राम
राम
भी करते हैं।
हाँ, इसलिए इसका कोई, जैसे हनुमान जी है तो उनका स्थान कम नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त नहीं है, ये है। इसलिए स्वांश में एक समान शक्ति होती है, स्वांश जितने भी है वो एक समान शक्ति होती है, और विभिन्न अंश में शक्ति कम हो जाती है।
एक लोगों क्या समान कह सकते हैं,
अचिंत्य भेदाभेद भगवान ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने, अचिंत्य भेदाभेद, एक साथ भेद और अभेद दोनों है, अचिंत्य भेदाभेद, दिस इज इनकंसीवेबल वननेस एंड ड्यूअलनेस, ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताया इसको, कि भगवान एक साथ एक है भी, राम और कृष्ण, और साथ में अलग भी है, कृष्ण और बलराम में भी ऐसा है, एक साथ एक है भी लेकिन साथ साथ में अलग भी है, दैट इज इनकंसीवेबल। लेकिन इस तरह से अचिंत्य वस्तुओं को समझने के लिए तो केवल एक ही व्यक्ति परमिट कर सकते हैं, अप्रूवल वही दे सकते हैं कि अचिंत्य वस्तुओं को कैसे समझा जाए। सर फाइन, और कुछ पूछना चाहते हैं? तो मायावादी लोग जो कहते हैं ना कि ब्रह्म श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर भगवान ने उसको तोड़ के फेंक दिया, मैं हूं सबका, मुझसे ऊपर कुछ है नहीं, फिर ब्रह्म कहां से आया, मैं तो मुझसे ऊपर कुछ है ही नहीं। और फिर ये सारी सृष्टि को हम देख रहे हैं, लेकिन इसमें कृष्ण को नहीं देख रहे, यहां पर भगवान बताते हैं ना, ये रहा चिंता भेदाभेद, देखिए सूत्रे मणि गणाइवा, अभी सूत्र में धागे, धागों में, धागे में मोती पड़े हुए हैं, तो उसमें धागा है कि नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन धागा है कि नहीं, अगर धागा नहीं होता तो क्या होता, मोती बिखर जाते है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो धागा दिखता नहीं है, लेकिन वो तो ऐसे मोती की माला है ऐसा दिखता है, लेकिन उसमें धागा कृष्ण है, ऐसे मोती भी गोल होते हैं और ब्रह्मांड भी गोल होते हैं, और ब्रह्मांड भगवान का जो अनंत शेष का जो हुड है, क्या बोलते उसको, फन, वो इतना बड़ा है कि इसके ऊपर ये छोटे छोटे प्लैनेट्स तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो आराम से इसके ऊपर रह सकते हैं, इतना विशाल है उनका अनंत शेष का फन। तो ये सारे जो ग्रह है उसका मूल संचालन करने वाले, उसको कंट्रोल करने वाले एक ही व्यक्ति है कृष्ण। भगवान बताते हैं कि जैसे धागों में मोती में धागे पर धागा परवाया होता है, मोती परवाया होते धागे के अंदर, उस तरह से मैं इस सारी सृष्टि में हूं लेकिन कोई मुझे देख नहीं सकता है और मुझसे कोई स्वतंत्र भी नहीं है। जिस दिन एक धागा एक मोती से निकल गया वो मोती बिखर जाता है। तो ये एग्जाम्पल स्वयं भगवान ने दिया। सो सभी कारणों के अंतिम कारण भगवान है, इस चीज को हमें समझना है। सो यू कैन हैव अ स्मॉल एक्सरसाइज ओके सो हम एक छोटा सा डिबेट करते हैं जिसमें प्रभु में से हम तीन भक्त चुनते हैं, एक परम ब्रह्म प्रभु, फिर आप और हरीश प्रभु, ठीक है, और आप चार भक्त आंसर देंगे। यू हैव टू डिबेट कार्ड से आमने सामने बातचीत। तो हम आपको तीन प्रश्न भी देते हैं और माताओं में हम दो चुनना चाहते हैं। आप अगर क्वेश्चन एक आपको देते हैं और दूसरा क्वेश्चन माता के पीछे, आपको आपको आंसर देना है, ठीक है। आप दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए तो पीछे आंसर देंगे, ठीक है। बाकी के चार आंसर दे सकते हैं। डिबेट का अर्थ होता है ये नहीं कि आप एक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा और फिर दूसरा जवाब देगा, इसका अर्थ ही नहीं होता। डिबेट का अर्थ क्या होता है, मैं ऐसा मानता हूं और आप कहेंगे कि नहीं आपका जो विचार है वो गलत है। अरे भाई कैसे गलत है, मैं बचपन में पढ़ा था, माँ बाप से सीखा था, स्कूल में पढ़ा था, ये तुम कैसे गलत कर सकते हो, इसको डिबेट बोलते हैं। लेकिन इसका अर्थ ही नहीं होता है कि हम, कई बार होता है भक्त लोग क्या है बुद्धिशाली तो होते ही है, तो जब डिबेट में हिस्सा लेते हैं तो इतनी हद तक वो एथिस्ट बन जाते हैं कि किसी बात को समझने को तैयार नहीं होते। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए प्रयास। जो नॉर्मल लोग होते हैं आर्ग्यूमेंट्स देने, आपको डिफेंड नहीं करना है, समझे ना, डिफेंड नहीं करना। लास्ट डिफेंड क्या होता है, मैं शास्त्र को नहीं मानता, मैं आपको नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, ये लास्ट डिफेंड है, मैं किसी को नहीं मानता। तो ऐसा डिफेंड नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट्स देनी है। आर्ग्यूमेंट का अर्थ होता है तर्क देना है, तर्क, आप सामने तर्क देना है। तो प्रयास कीजिए, हम आपको इसमें, क्योंकि डिबेट अनलिमिटेड होती है इसलिए हमें इसको टाइम देना पड़ेगा। सो आपके पास घड़ी है माता जी, आपके पास घड़ी है, घड़ी, यू हैव एनीबॉडी हैज क्लॉक,
देखूंगा।
यू हैव टू आंसर ऑल्सो। हाँ आप रखिए आपके पास ही। जब हम डिबेट शुरू करें, 5 मिनट होने के बाद आपको कहना है कि टाइम अप। 5 मिनट तो कम पड़ेगा, शायद 5 क्वेश्चन है ना, तो हम आपको 10 मिनट का टाइम देते हैं। 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद आपका टाइम, आपको टाइम अप बोलना है।
हमारे लिए 10 मिनट्स टोटल,
सबका मिला करके 10 मिनट्स, दो दो मिनट का टाइम, 15 मिनट कर सकते, बट देन वी हैव अनदर एक्सरसाइज। 10 मिनट्स यू कैन स्टार्ट विथ। लेकिन जब टाइम अप होता है तो हम जहां पर भी है, डिस्कशन में है, विदाउट कंक्लूजन है, और अंदर से एकदम खुन्नस चला है कि इसको आंसर देना ही है तो लेकिन हमें रुक जाना है, क्योंकि हम तो ड्रामा कर रहे हैं, हम तो डिबेट कर रहे हैं, ये तो कोई वास्तविक नहीं है, बनाया हुआ है। तो ये सारी एक्सरसाइज हो जाए उसके बाद आपको ये बताना होगा कि 12 एम्स में से ये कौन से एम को टारगेट कर रहा है। अभी से हम सारी एक्सरसाइज इस तरह से करेंगे, आपको बताना होगा कि ये कौन सा एम, 12 एम में से कौन सा एम है। तो इसलिए आपके हैंडी रखना चाहिए वो 12 एम्स का जो फोटो एम है, जो कुछ भी है वो हैंडी रख लेना। ज्यादा इसके विषय में सोचना नहीं, बहुत आसान होता है ये सब, एम्स आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो 5 विचार हम प्रस्तुत करते, 5 विचार। आप एक दूसरे को फेस कर सकते हो बाद में, आप यू कैन फेस इच अदर। तो हरेश प्रभु, आपका आपका विचार है, आपको विचार के विचार के अनुसार आपको थोड़ा फाइट भी देना पड़ेगा। तो विचार है, भक्ति बड़ी सरल है इसलिए कम बुद्धि वालों के लिए योग्य है। टेक्स्ट नंबर 3 में से है ये। फिर परम ब्रह्म प्रभु, आपके ये विचार है कि आपके पास केवल 5 तत्व है, मेरे पास 92 तत्व है। पंचमहाभूत है ना आपका, आपके पास 5 तत्व है लेकिन मेरे पास 92 तत्व है, आपको ऐसा बताना है। लेकिन आप जो बता रहे हो, ये आपका विचार ही है, वो आपके समय में, उस समय कृष्ण के टाइम पे वो 5 सही था, पंचमहाभूत कृष्ण के टाइम पे जो 5 था वो सही था, लेकिन अभी 92 हो गया। ये है टेक्स्ट नंबर 4। फिर है अमित प्रभु, टेक्स्ट नंबर 5 से, मन, माइंड इज नथिंग बट मोर देन अ ब्रेन इटसेल्फ।
टेक्स्ट नंबर 24
आपका है, टेक्स्ट नंबर 4। ठीक है, यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, और तो आपको भी डिफेंड करना है फिर। माइंड इज नथिंग मोर देन ब्रेन, यू हैव टू डिफेंड। लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल। टेक्स्ट नंबर 6। और माता जी, आप करेंगे ना आर्गुमेंट, ये आपको आंसर देना है एनीथिंग। लेकिन ठीक है, आप कोई एक, आपकी टीम में भी कोई स्ट्रांग चाहिए, पीछे वाली टीम में भी कोई स्ट्रांग चाहिए। डिबेट है ना ये, तो क्वेश्चन आंसर नहीं है, इट इज डिस्कशन। तो जय बन जय माधव आपके लिए। ब्रह्म है वो कृष्ण का भी स्त्रोत है। टेक्स्ट नंबर 7।
ये लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल, कौन सा
है? टेक्स्ट नंबर 6। सो वी स्टार्ट विथ हरेश प्रभु। आंसर, ये डिबेट करने वाले 4 भक्त तो यही रहेंगे, कोई भी प्रश्न हो। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, वी कैन हैव 3 आप उत्तर देंगे, प्रेम विलास प्रभु आप और आप, तीनों को सहाय करेंगे बारी बारी। उन सामने
उनकी टीम में चला
जाएगा, उनकी टीम में
वैसे
हाँ, लेकिन करना क्या होगा कि वो जब बोलेंगे तो उनको साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मीन्स आप कहीं नो प्रॉब्लम, आप रहिए बैठिए।
पांच तत्व है आपके पास और मेरे पास 92 तत्व है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, वो 92 तत्व कैसे वो समझ
नहीं, वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, नहीं बताना है कौन से है, नहीं बताना है,
बहुत स्ट्रांग हो गई
ठीक है। ओके, जो तीन तीन भक्त है जो सामने उत्तर देंगे, सो स्टार्ट विथ हरेश प्रभु, मदर टाइम स्टार्ट कीजिए।
भक्ति बहुत सरल है और सबको करनी चाहिए आज के युग में।
ये आपका प्रश्न क्या है?
प्रश्न है, भक्ति सरल है इसीलिए कम बुद्धि वाले भी भक्ति कर सकते हैं।
कम बुद्धि वाले के लिए है, ये
कम बुद्धि वाले के लिए है,
मिस बुद्धिशाली के लिए नहीं है।
शुरू करिए,
स्टार्ट विथ,
मतलब आप बोल रहे हैं कि भक्ति कम बुद्धि वालों के लिए
है, मतलब इसमें इतना वो हाई एजुकेटेड की जरूरत नहीं है।
अच्छा, मतलब आपके मम्मी पापा दादा वो लोग अंदर से वो एकदम कम बुद्धि वाले थे, ऐसा वो लोग भक्ति करते थे, तो आप बोल रहे हैं कि उनमें बुद्धि नहीं थी? ऐसा
नहीं, बुद्धि थी उनमें,
क्योंकि फिर आपके सिल्की जैसे जैसे पिता का स्तूल होता है वही होते ही है, मतलब वही बुद्धि में होता है। तो अगर आपके मामी पापा भक्ति कर रहे थे, वो भक्ति कर रहे थे, वो नास्तिक थे एकदम?
नहीं, नास्तिक।
डिबेट, वेरी गुड डिबेट, वेरी नाइस। हाँ पूछिए।
शंकराचार्य भी मायावादी में थे, मतलब वो भी कृष्ण को मानते थे, धीरे धीरे उनमें भी फिर गायब हो गया मायावादी।
नहीं, वो उनको मायावाद
मानते थे कि गोविंद ही सब है,
काश में उन्हें बज गोविंदम, बज गोविंदम बोलना।
तो प्रश्न क्या है?
तो फिर बाद में उन्हीं के लोगों ने फिर
उनके अनुयायी जो है पकड़ के बैठते ना,
लेकिन उन्होंने पब्लिक में इस तरह से सबको सिखाया नहीं था कि कृष्ण का ही भजन करो। वो पब्लिक में तो यही चीज बताते थे सबको कि अद्वैत है, सब कुछ एक ही है, सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न होता है। सो शंकराचार्य एक्चुअली उनका प्राकट्य ही हुआ था इसके लिए,
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या,
वो यही उनका बौद्ध को नाश करने के लिए शंकराचार्य का जन्म हुआ था। बौद्ध का जो तत्व ज्ञान है उसको नाश करने के लिए शंकराचार्य प्रकट हुए थे, लेकिन शंकराचार्य ने ये जो सिद्धांत प्रस्तावित किया ये भी भगवान के आदेश के कारण, भगवान ने कहा था कि इस प्रकार का मायावाद सिद्धांत तुम बनाओ, और फिर मायावाद सिद्धांत को हटाने के लिए फिर चैतन्य महाप्रभु आया, उनको उखेड़ करके फेंक दिया। इसलिए वो शिवजी है, स्वयं शिवजी की थोड़ी गलती करेंगे, जगन्नाथ अष्टकम, हाँ शंकराचार्य शिव जी का अवतार है, अब जगन्नाथ स्वामी ने पथगामी उन्होंने लिखा है। सो वेरी गुड अटेंड। नाउ भगवान अभी एक चीज ये बताते थे सातवें श्लोक में बताया कि सब कुछ मुझसे प्रकट होता है और मैं सबका सार हूँ, सबका जो मूल तत्व है, सार तत्व है, वो मैं हूँ। तो ये इस तरह से का कोई व्यक्ति देखेगा मुझे तो सुनेगा और फिर उस हिसाब से मुझे अनुभव करेगा, तो उसका विश्वास जो होगा, उसकी जो श्रद्धा होगी वो दृढ़ हो जाती है सार तत्व के रूप में देखने से। तो किस किस तरह से है, तो भगवान दो चार श्लोक एग्जाम्पल के रूप में बता देते हैं। चार श्लोक आते हैं आगे वाले, पढ़िए आठ नंबर का श्लोक।
कुंती पुत्र अर्जुन, हूँ पानी में श्राप छु, चंद्र नो प्रकाश छु, वैदिक मंत्रों में ओंकार छु, हूँ आकाश में शब्द तथा मनुष्य में सामर्थ्य छु।
हाँ, भगवान यहाँ पर कहते हैं कि पानी का स्वाद मैं हूँ, लेकिन आजकल तो ऐसा पानी मिलता नहीं, लेकिन पानी का जो सार तत्व है, पानी का जो मूल है, वो है स्वाद। पानी में स्वाद है, और एक्चुअली ऐसा पानी जैसे हिमालय में कहीं पर आपको मिल सकता है शायद, कि उसका पानी का स्वाद आपने पता नहीं, आप में से किसी का कोई अनुभव है इस प्रकार का, कोई ऐसा पानी पिया कि आज तक पानी का स्वाद ऐसा मिला नहीं है? आपने हिमालय में पिया था?
कुछ डिफरेंट आपका एक्सपीरियंस है जो सबको होता है, सब भाई
ऐसा है जी। एक 22-23 हजार फीट की हाइट पे एक गुरु डोगमार लेक है टेपतन प्लेटो के जस्ट नीचे।
ओके,
तो एक लॉन्ग रनिंग पेट्रोल में हम लोग गए थे तो वहाँ पे हर तरफ पूरा बर्फ ही बर्फ है। तो एक ऐसा सोर्स है जहाँ से पानी निकलता है,
अच्छा,
वहीं से तिस्ता नदी बहती है, बाद में जो आकर ब्रह्मपुत्रा में जाती है। वहाँ पे जो जल पिया था वो
उसका स्वाद अभी तक है,
वहाँ कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे कोई इवन बैक्टीरिया तक ना पनपता।
अब सोचिए उसका स्वाद, उस जल का स्वाद, अगर भगवान कहते हैं कि जल का स्वाद मैं हूँ, पानी पीते समय खास करके जब निर्जला वाले दिन के द्वादशी के दिन आपको दूसरे द्वादशी के दिन जब दूसरे दिन आपको पानी पीने मिलता है तो आपको लगता है कि ये तो कितना, 24 घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, कितना दर्द आया मुझे मैंने उसको, तो वो स्वाद जो है वो है भगवान, वो भगवान तो तुरंत कृष्ण याद होते। अगर कृष्ण पानी का स्वाद नहीं होता, आपने कभी स्वाद बिना स्वादहीन पानी पिया है? ऐसा स्वाद आता कड़वा और जिसका कोई स्वाद ही नहीं होता, कोई आपको अच्छा लगता है पानी? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जब छोटा था तो बॉम्बे में एक बार गया था तो जनरली क्या होता है कि आप जैसे जगह बदलते रहते हो वैसे स्वाद बदलते रहते तो, लेकिन मैं इस जैसी जगह पे गया था वहां का बहुत ही कड़वा लगा पानी। मैंने कहा कि पीने का पानी चाहिए मुझे, पीने का चाहिए कड़वा, छोटा बच्चा था तो वो सामने वाले बोले, बहुत छोटा था मैं, कितना था, 6 साल का, तो वो बोले कि बोले यही पानी पीते हैं, इसको रोज पीते हो आप? बोले हाँ इसको रोज। बोले कुकिंग भी इससे होती है क्या? तो कुकिंग भी, तो ऐसे आप उस पानी को पी नहीं सकते आप, जिसमें स्वाद नहीं है या जो बेस्वाद है उसका स्वाद नहीं है वो पानी नहीं पी सकते। और वही पानी जिसमें मिलाया जाता है फिर स्वाद आता है।
पहले रानीप साइड ऐसा पानी मिलता ना,
अच्छा, स्वाद बिना का
कड़वा पानी,
और उसको रोज पीते थे लोग।
अभी भी बहुत
हाँ, तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। भगवान कहते हैं कि पानी का स्वाद मैं हूँ। प्रभुपाद यहाँ तक कहे कि शराबी पियकर कोई व्यक्ति अगर शराब में वाइन जो पीता है वो उसमें भी पानी तो होता है, अगर वो कहेगा, अगर केवल इतना सोच रहे कि वाइन का स्वाद भी कृष्ण है तभी भी धीरे 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 वो कृष्ण भक्त बन के वाइन छोड़ देगा, इतना सरल है कृष्ण भक्ति। केवल इतना सोच रहे बस कि जो वाइन पी रहा है उसका स्वाद कृष्ण है, कृष्ण के कारण आपको स्वाद आ रहा है, तभी भी वो उसका उद्धार हो सकता है। सो दूसरा है सूर्य और चंद्र का प्रकाश। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे सूर्य चंद्र के प्रकाश के बदले में लाइट से भी काम चला लेता हूँ, ट्यूबलाइट से, लेकिन ये लाइट को भी कैसे चलती है? बिजली, बिजली कहाँ से आती है? सूर्य से। तो इस तरह से सूर्य और चंद्र का जो एसेंशियल है, ऐसे तो वो हीट भी देते हैं और कूलिंग भी देते हैं सूर्य और चंद्र, लेकिन उनका जो सार तत्व है वो है प्रकाश। सूर्य को लोग प्रकाश के लिए ज्यादा याद करते हैं, चंद्र के उसकी चांदनी के लिए ज्यादा याद करते हैं उसको। फिर सारे मंत्रों में ओम मैं हूं, बिना ओम के मंत्र होते ही नहीं है, ओम बीज मंत्र है, ओम के बिना कोई भी मंत्र बोलते उसका फल नहीं मिलता, उसका असर नहीं होता बिना ओम के, इसलिए वो बीज मंत्र बोलना आवश्यक होता है। इसलिए भगवान के बोलते कि सारे मंत्र में ओम मैं हूं। आकाश में शब्द मैं हूं, आकाश में जो शब्द का जो आधार है, जब लास्ट टाइम हमने आपको चर्चा किया था, भगवान बोलते वो मैं हूं। और मनुष्य में क्षमता में सामर्थ्य, कितना भी कोई महान व्यक्ति होता है उसका सामर्थ्य भगवान के कारण ही आता है। सामर्थ्य से कोई व्यक्ति क्या बन सकता है? बड़ा आदमी बन सकता है, कोई विद्वान बन सकता है, सफल बन सकता है, धनवान बन सकता है, कोई महात्मा बन सकता है, सामर्थ्य से बड़े बड़े काम कर सकता है, राइट? तो आप में से भक्त रैंडमली अगर बताना चाहे तो ये बता सकते हैं कि आप भगवान जब ये कहते हैं कि मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूं, इसका अर्थ क्या होता है और इसको कैसे आप अनुभव करते हो? आपने आपके आपका विचार प्रस्तुत कीजिए इसके ऊपर। जस्ट रेज योर हैंड, आप हाथ उठाइए और बताइए। हाँ, संक्षिप्त में।
मनुष्य में सामर्थ्य में उसको हम कभी देखे, किसी पे अगर अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, तो उसके लिए लड़ना और उसको न्याय दिलाना वो भी एक प्रकार का सामर्थ्य हो सकता
है। और वो सामर्थ्य भगवान से आता है,
वो सामर्थ्य भगवान से।
ओके, और कोई भक्त? हाँ,
शास्त्र में लिखा गया कि भगवान इतना सामर्थ्य देता है कि लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है।
हुक्म करो थी। हाँ, तो सामर्थ्य भगवान।
जो ये बहुत पॉपुलर है आजकल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, मगर उनको पता नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है। वो हम लोग खुद नहीं कर सकते,
पर इसलिए कभी अगर कोई ये सोचता है एंजस्ट जो का पाठ की हर एक सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, तो फिर स्त्री के पीछे किसका हाथ होता है? भगवान का हाथ होता है। कहने का तात्पर्य है कि हर एक सामर्थ्य भगवान से आता है। और एनी अदर जोड़? यस,
सामर्थ्य प्रकट होती है कुछ भी कार्य करके, कुछ भी ऐसा कोई बड़ा काम करता है तो उससे पता लगता है कि सामर्थ्य बात है। बिना कार्य के परिणाम के सामर्थ्य का निर्णय थोड़ा मतलब उचित नहीं
रहता। yes, yes.
और समस्त कारणों का उनके, जैसे अगर ताकत भी आ रही है शरीर में, हमारे शरीर में भी जो शक्ति आ रही है तो सूर्य से आ रही है, सूर्य भगवान श्री कृष्ण की नेत्र में माने जाते हैं।
yes.
तो सारी शक्ति का स्रोत चाहे वो बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से लेके एटीपी तक हो, वो आती तो वहीं से है।
yes.
तो केवल पुरुषों के लिए तो उदाहरण रूप में दिया गया, क्योंकि पुरुषों का प्रसाद दिखाई देता है हम सब। जानवरों का प्रसाद ज्यादा दिखाई नहीं देता, कभी कभी दिखाई देता।
उनका सामर्थ्य भी भगवान
सबका। सबका सामर्थ्य जो है वो उन्हीं से आता है, क्योंकि सारी शक्ति का स्रोत वही है।
yes.
पावर हाउस वही है। तो ये बिल्कुल उचित तरह से भगवान ने कहा कि जो भी कुछ हो रहा है, जिसके पुरुष करे या कोई भी करे, तो शक्ति का स्रोत भी वही है। yes. और उस कारण का परिणाम भी वही है।
okay.
क्योंकि उनके सैंक्शन के बिना तो सफल ही नहीं हो पाएगा।
yes.
तो पुरुषार्थ के रूप में अगर देखा जाए या शक्ति के रूप में देखा जाए, तो उन्हीं की शक्ति और उन्हीं के सैंक्शन से ही पुरुषार्थ सिद्ध होता है।
ओके, आप भी कुछ कहना है?
किसी भी चीज को समझने की शक्ति अपना सामर्थ्य में
है। समझने के लिए सामर्थ्य चाहिए, तो वो कितना भी व्यक्ति दो दो तीन तीन घंटा, तीन दिन, चार दिन, तीन साल, चार साल पढ़ा रहेगा, बुक खोलकर, किताब खोलकर, वो समझ नहीं पाएगा जब तक भगवान उसको यस सामर्थ्य की दुकान से। यस, माताओं की ओर से कुछ नहीं आया अभी तक। आप लोगों के पीछे भी भगवान है। एक और कोई उदाहरण ही दे रहे, सब लोग अपना अपना जस्ट एग्जांपल ही दे रहे।
सिंपल एंड इजीएस्ट चीज लाइक गिविंग अनदर चाइल्ड बर्थ। एक हम जीव हो के एक नए जीव को मैं पैदा कर,
दूसरा एक शरीर मनुष्य को दे रहे हैं, वो सामर्थ्य भगवान से आता है,
भगवान का शक्ति के
देने। यस, वेरी गुड। यू कितना भी मेहनत करे, कोई कितना भी प्रयास करे, लेकिन जब तक भगवान यस नहीं करे तब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है। यस, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। सो एक विचार ये भी है कि आप बीइंग अ वैष्णव डिवोटी, आप बने कृष्ण भक्ति में जुड़े, आप सेवा कर रहे हो, आगे दीक्षा ले जा है, दीक्षा लेने वाले हो या आगे दूसरा दीक्षा लो, इसमें भी आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। इसके पीछे भी जो सामर्थ्य होता है वो भगवान का होता है। और यहाँ तक कि आप अगर ऐसा कोई प्रचार करना चाहते हो, ऐसा कोई सेवा करना चाहते हो जिससे भगवान का ध्यान आकर्षित हो सकता हो, स्पेशली ऐसे तो सबके प्रति भगवान आकर्षित है, लेकिन जैसे आपने कोई ऐसा कार्य किया जिससे हजारों लोगों को फायदा हो रहा है, ऐसा कोई कार्य किया जिससे आपका कई लोगों के जीवन परिवर्तन हो गए, अगर आपने कोई ऐसे कार्य किए तो इनके पीछे जैसे प्रभुपाद, तो उनके सामर्थ्य के पीछे किसका आ गया? भगवान का। उनके जो शिष्यगण है, वो लोग जो सेवा करते, प्रचार करते, वो आप प्रयास भी करो, उनका अनुकरण भी करोगे तो भी निसफल असफल हो जाओगे। तो इनके सामर्थ्य का कौन? भगवान जिम्मेदार। तो सब में सामर्थ्य भगवान बोलते मैं हूँ। फिर आगे बोलिए नौ श्लोक में। यस,
ये प्रणव सर्वेश, तो ये मतलब जैसे कोई अगर बोलता है कि, फिर अगर भगवान बोलते हैं कि ओमकार मैं ही हूँ, तो हम ओम 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 ऐसा कर सकते हैं, दैट इज कृष्णा। तो मतलब उसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए?
हाँ, अच्छा प्रश्न है। क्योंकि अगर प्रणव ओमकार है और वो भगवान बोलते मैं हूँ, लेकिन फिर भगवान स्वयं भी तो कलयुग का जो महामंत्र देते है, मंत्र और महामंत्र, और साथ साथ में भगवान ये भी कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ, लेट्स से ओम इज हिमसेल्फ सेइंग दैट यू चैंट दिस वे, इफ कृष्णा इज ओम देन ओम इज हिमसेल्फ इज सेइंग दैट यू चैंट इन दिस वे, देन व्हाई शुड बी कॉन्कॉक्टेड। अगर कोई ओम बोलता है तो इसमें कोई गलत नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन प्रोसेस बना, यहाँ पर भगवान प्रोसेस नहीं बता रहे, यहाँ पर भगवान एसेंशियल चीज बता रहे, प्रोसेस नहीं बता रहे। ये महामंत्र इसलिए क्योंकि इसमें ओम की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए महामंत्र है, बीज मंत्र की आवश्यकता नहीं है इसमें।
जो अभय चरण में वो लिखा था गौर किशोरदास बाबा जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को दीक्षा देते हैं तो गायत्री मंत्र का देते हैं और गायत्री मंत्र बोलते ओम भूर्भुवस्व, बड़ी आवाज में हमको सुनाई भी दे, तो हरे कृष्ण महामंत्र तो स्टार्टिंग से सबको दिया जाता है कि भी 16 माला करना है, लेकिन जब वो ब्राह्मण दीक्षा करते हैं तो उसके बाद गायत्री मंत्र कंपल्सरी हो जाता है, तो क्या है ये गायत्री मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र जो है दोनों वो एक सेकंड स्टेज में आता है ऊपरी स्टेज में, मतलब बीकॉम के बाद एमएससी किया कि ऐसा कुछ, तब ये गायत्री मंत्र का इम्पोर्टेंस है, ऐसा कुछ क्या है?
ये लंबा विषय है लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। इसमें ऐसा है कि संक्षेप में अगर आप बताए तो हरि नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो एक यूनिवर्सल सीक्रेट है, जो ओपन सीक्रेट है, जो सबको पता है, ऐसी सीक्रेट है ये हरे कृष्ण महामंत्र। जैसे समझ लो कि अगर ये कंप्यूटर है, अगर ये कंप्यूटर सोने का बना है लेकिन लोगों को पता नहीं सोना किसे बोलते हैं, इसलिए जब तक आप उसको पहचानोगे नहीं तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र वो भगवान से भिन्न नहीं है बिल्कुल, वो स्वयं भगवान है, लेकिन जब तक आप उसकी महिमा को नहीं पहचानते तब तक वो आपके लिए अनजान रहता है हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन उसकी शक्ति तो है। और जो गायत्री मंत्र है वो वास्तव में परंपरा के साथ जोड़ने के लिए जो मंत्र दीक्षा होती है, ये मंत्र दीक्षा के लिए भगवान स्वयं इसका उपयोग किए है। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को भी दीक्षा दिया था और वो जो गायत्री है वो काम गायत्री है, वो जो वैष्णव भक्त लोग जो दीक्षा लेते हैं ब्राह्मण दीक्षा, वो दीक्षा में ये एक नहीं होता, हमारा बहुत सारी गायत्री होती है तो वो गायत्री दी जाती है। तो ये मंत्र दीक्षा जो है उसको गुप्त इसलिए रखा गया क्योंकि वो कान में दिया जाता है और गुप्त मंत्र होता है। शास्त्र में एक जगह लिखा गया है कहीं पर पुराणों में कि आध्यात्मिक गुरु को, इष्ट देव को और अपने जिसको आप मंत्र जप करते हो, ये तीन चीज को और अपनी जप माला, चार चीज, ये चार चीज को किसी को नहीं दिखाना चाहिए।
तो
ये तो एक किसी श्लोक पे ये आई फॉरगॉट दैट श्लोक, चार चीज नहीं दिखानी चाहिए, माला का जप माला या बिडबैग यूज करते हो क्योंकि उसको दिखाना नहीं चाहते आप, जप माला, इष्ट देव, आपके इष्ट देव वो कौन है, वो हाँ श्लोक के साथ कमेंट, हाँ इसी में आपका होता है,
आगे गोपनीय करके कुछ है,
और आपका ये मंत्र कौन सा है वो भी नहीं बताना चाहिए कभी, और आपके गुरु कौन है, ये ना आजकल कई बार ये फैशन होती है, प्रभु जी मायापुर में जाएंगे, अच्छा रो भक्त, आपका नाम प्रभु जी, स्वयं सोदास, कहाँ से हो, यहाँ से हो, आपके गुरु कौन है, थैंक यू प्रभु जी। तो ये उचित नहीं है, मैं हमेशा भक्तों को बोलता हूँ कि कभी मत पूछो किसी को कि उसके गुरु कौन है, इससे आप क्या बताना चाहते हो ये पूछ करके, आपकी जिज्ञासा संतोष करने के लिए कर रहे हो केवल, क्यों आपको जानने से क्या लाभ होगा कि किसी व्यक्ति का गुरु कौन है, इससे क्या लाभ होगा आपको जानने से,
हो सकता है गुरु को एवेल्युएट करने के लिए पूछते,
हाँ व्हाट एवर रीजन, बट आपको कोई लाभ नहीं है। और अगर वो चाहे भक्त तो बता सकता है सीधा कि शास्त्र में मना किया है गुरु बताने के लिए, मैं नहीं बताऊंगा ना, तो आपको अपमान भी हो सकता है इससे, तो इसलिए कभी किसी व्यक्ति को उसके गुरु के विषय में नहीं पूछना चाहिए कि आपके गुरु कौन है, नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि सारे गुरु एक समान होते हैं, इसलिए जितनी किसी भी गुरु का शिष्य है वो भक्त भक्त है, वो किसका शिष्य हो इम्पोर्टेंट नहीं है, वैष्णव हो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ
पूछे। किसी को ये भी नहीं पूछ सकते ना कि आपने दीक्षा किससे ली?
एक ही बात हो गई। अगर आप बोले आप कहाँ से हो, अहमदाबाद से, या आपके आपने जब फ्लाइट लिया था, ट्रेन लिया था, कहाँ से लिया था, तो एक ही बात हो गई। एक्चुअली ये जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप बग लोग जब आईडीसी कोर्स बाकी है ना, तो जब डिसाइपल कोर्स करोगे तो इसमें इसका डिटेल में वर्णन आएगा।
इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब 95-99% डिवोटीज दे आस्क।
यस, दैट्स अनफॉर्चुनेट।
एवरीवन आस्क। और मतलब मैं जब ये आईडीसी कोर्स किया था, तो मुझे मैंने इसको अच्छी तरह से नोटिस किया था और मुझे बताया भी था उन्होंने, तो आई ट्राई नॉट टू आस्क टू
एनीवन।
मगर सब लोग पूछते हैं तो क्या जवाब
देते
हैं, फिर एट दैट टाइम उनको ऑफेंड करना अच्छा नहीं रहता, इसलिए हम बता देते हैं।
प्रभुपाद को कभी कोई पूछता था ना मेरे गुरुजी कौन है, तो प्रभुपाद कैसे बताते थे, दो हाथ जोड़ के आंखें बंद करके, ही इज डिवाइन ग्रेस, ओम विष्णुपाद परम हंस परिराज कचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, इस तरह से पूरा नाम, फुल नेम विद फुल रिस्पेक्ट। इसलिए कभी किसी को पूछना भी नहीं, और ये सामने से बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि मैं किसका शिष्य हूं। बार बार क्या क्यों बताना चाहते हो, वाई यू वॉन्ट टू से दैट मैं इनका शिष्य हूँ, वाई? भाई ऐसा कार्य करके दिखाओ कि सामने वाला व्यक्ति खुद पता करना 10 जगह पूछे ये किसका शिष्य है, इतना अच्छा सेवा कर रहा है। दैट शुड बी द क्वालिटी। सो नेक्स्ट श्लोक में भगवान इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली मेरा इच्छा था 16 तक का, देखते क्या होता है। चलिए।
मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ।
हाँ नहीं, नौ नंबर
नौ नंबर
अच्छा ओके।
हाँ
भगवान स्टार्ट पृथ्वी का सुगंध, पृथ्वी में जो सुगंध तत्व है, पृथ्वी का सुगंध आपने पता है कैसी होती है? सबको पसंद होगा, पहली बार मिट्टी की सुगंध, पृथ्वी की सुगंध आती है ना। कभी कभी आपके शहरों के तो बात छोड़ो, लेकिन वृंदावन मायापुर जैसे जहाँ कम विकास हुआ ऐसी जगह पर बारिश नहीं भी है, लेकिन आप सुबह सुबह जाएंगे 5-6 बजे तो हल्की सी खुशबू आती है, पृथ्वी की खुशबू होती है वो। अब देखिए पृथ्वी कैसा तत्व है, भगवान ने कैसे बनाया। आप गुलाब का बीज लीजिए, बिया सीड बीज है ना, वो आप लीजिए, उसको सूंघिए, उसका सुगंध आएगा, उसमें कोई सुगंध नहीं है। उसको जमीन में डाल दीजिए, फिर उसको पौधे को पानी डालने के लिए पानी लीजिए, और फिर पानी को स्मेल करके चेक करिए कि पानी में से कोई खुशबू आ रही है नहीं आ रही है। लेकिन फिर उस बिना खुशबू के बीज के ऊपर बिना खुशबू का पानी डालो, और उसमें से जो पौधा आता है उसमें जो गुलाब बनता है उसकी खुशबू कैसी होती है, ये खुशबू कहाँ से आती है? जमीन पृथ्वी से आती है, और पृथ्वी की खुशबू भगवान से आती है। और ऐसा ही नहीं, उसके बस दो एक फुट बाजू में आपका जैस्मिन का बीज डाला है, एक फुट बाजू में बस, और वहां पर भी पानी बिना सुगंध का ही था और बीज भी बिना सुगंध का था, और वहां से जैस्मिन का फूल निकला, उसके आगे गार्डनिया का फूल डाला है, गार्डनिया बल्ब, उसका चेक करो खुशबू, तीनों का खुशबू, यहाँ तक कि खुशबू लोगों का मन फ्रेश कर देती है, रोग मिटा देते है, यू नो मूड एनहेंस कर देती है, परिवर्तन हो जाता है। लोग खुशबू क्यों यूज करते हैं आजकल, है ना?
रूम फ्रेशनर,
इज नॉट इट? रूम फ्रेशनर, बॉडी फ्रेशनर, इज नॉट इट? लोग करते हैं, सब जगह लगाते हैं, कितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं। हाँ,
मिलियन मिलियन डॉलर
तो कई बार मैं वहां पर गया था दुबई में या अपने अरब कंट्री में, तो वहां से जब मैं आ रहा था एयरपोर्ट पे, एक पूरा गैलरी होता है उसका, तो खुशबू होगा दुनिया भर की खुशबू, आपको पूरा गैलरी आपको उसमें से गुजरना पड़ता है, इतना खुशबू। लेकिन कहने का तात्पर्य खुशबू आई कहाँ से? भगवान से आती है। आप सोचिए कितना, और ऐसा गुलाब का जो फूल है उसको आप कितना भी आर्टिफिशियल ट्राई करके सिंथेटिक स्मेल बनाना ट्राई करो, बिना प्रकृति का उपयोग किए, केमिकल से बन ही नहीं पाता है। अगर किसी अगर आप में से कोई अगर आर्टिस्ट है, जैसे माता ये आर्टिस्ट है राइट, तो अगर आपको गुलाब आप कितना भी अच्छा आपको मटेरियल लाके दे दे, आप बहुत सुंदर गुलाब बना सकते हो पेंट करके, लेकिन फिर भी वो असली गुलाब और फर्क पता पड़ेगा राइट। क्यों? क्योंकि भगवान ने बनाया हुआ है। तो गुलाब पृथ्वी का सुगंध, भगवान कहते मैं हूं। हीट फायर अग्नि, जो अग्नि है उसका उष्णता मैं हूं, बिना उष्णता के अग्नि क्या करेगी। लेकिन वो उष्णता भगवान बोलते हैं, जब तक अग्नि की उष्णता नहीं होती तब तक खाना पकेगा कैसे, और खाना पकेगा तो हम खा सकते हैं। खाना अपने आप में तो पूरा होता नहीं, और खाने के बाद भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए?
स्वीट
स्वीट के बाद क्या चाहिए? मुखवास चाहिए, डेजर्ट चाहिए, और क्या चाहिए?
डाइजेशन
फायर जी,
खाना पचाने के लिए भी।
हाँ, खाना पचाने के लिए भी अग्नि चाहिए, कुकिंग करने के लिए। कई बार हम लोग डॉक्टर लोग बोलते हैं ऐसे, जैसे बाहर कुकिंग होता है ना, वैसे अंदर भी कुकिंग होता है। अंदर भी, बाहर कुकिंग में कम टाइम लगता है, अंदर कुकिंग में ज्यादा टाइम लगता है, अंदर उसको पचाने के लिए। और इसका सिस्टम बिल्कुल वैसा है, अगर बाहर अगर आप कुकिंग नहीं कर चलता है, लेकिन अंदर अगर कुकिंग का सामान खत्म हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, फिर भूख लगती है। और अगर आप वो कुकिंग उसको कुछ दे, उसको देना पड़ता है कुछ, जैसे मन को देना पड़ता है ना कुछ, वैसे जठराग्नि को भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अगर आप नहीं देते तो गैस क्रिएट होता है, शरीर खराब हो जाता है, अल्सर हो जाता है, सो मेनी थिंग्स। So this is fire. Then I am the life of all that lives. सारे शरीर में जीवात्मा भगवान बोलते हैं, जीवन में जीव मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ। जैसे आपने देखा है कॉम्बिनेशन अलग अलग प्रकार के, कौवे के साथ भैंस का होता है, कौवे के साथ भैंस का होता है, कौवे का बंदर के साथ भी होता है ना, इन लोग का। अभी बंदर और ये कुछ पर अलग तरीके से बिहेव करता है, कौवा कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है, और कभी आपस में दोनों झगड़ते भी है। तो इस तरह से तो कई सारी चीजें, हर एक जीवात्मा पैरट है, ये सब कहां से लाए? ये उनका अपना कुछ नहीं है, ये सब आत्मा के कारण आता है। उसके अंदर आत्मा है, उसने इस प्रकार का सोचा, इसलिए उसको ये शरीर मिला, और ये शरीर के आधार पर उसको इस प्रकार के गुण मिले। और फिर तपस्वियों में, तपस्या मैं हूं, क्योंकि वो तपस्या तभी व्यक्ति कर सकता है जब उसको सहन करने की शक्ति हो, उसमें तप करने की शक्ति हो। और फिर अंत में फिर भगवान, अभी आगे एक दो श्लोक और है, बताइए। 10 टेक्स्ट नंबर 10 कुछ प्रश्न है, पूछिए।
तपस्याओं में श्रेष्ठ तपस्या प्रभु कौन सी मानी जाती है? ब्रह्मचर्य इज द, या फिर और कोई इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ तपस्या?
किस दृष्टिकोण से?
मतलब दृष्टिकोण तो पता नहीं, बट जैसे बहुत सारी सभी इंद्रियों की अलग अलग तपस्या होती है,
तो मन की तपस्या बेस्ट, क्योंकि मन अगर वश में आता है तो इंद्रियां अपने आप वश में आ जाती है इसलिए। लेकिन तपस्या जो है उसके भी अलग अलग विभाग है। तपस्या केवल, तपस्या को दूसरी दृष्टिकोण से देखना अच्छा है ज्यादा, कि जो तपस्या आपको भगवान से करीब पास में ले जाए वो तपस्या आपके हित करे। तपस्या का अर्थ होता है कि वॉलेंटरी एक्सेप्टिंग डिस्कम्फर्ट, दैट इज तपस्या, वॉलेंटरी डिस्कम्फर्ट लेना, अननेसेसरी नहीं, विथ रीजन। तपस्या का 18वें अध्याय में आएगा कि तपस्या किस प्रकार की होती है, सत्वगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या, इस तरह से तीन प्रकार के, भी कौन सी श्रेष्ठ होगी आएगा। फिर टेक्स्ट नंबर 10, यस।
हे प्रथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ।
हाँ, बीज का अर्थ होता है सबका बीज, प्रधान, प्रधान का अर्थ होता है जैसे वो महत्व की बात की थी ना हमने, वो सारा बीज सब कुछ उससे प्रकट होता है। ये सारी सृष्टि का जो बीज है वो रॉ मटेरियल बोल सकते हैं आप उसको, सारे पंचमहाभूत के रॉ मटेरियल, वो ओरिजिनल बीज ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, जितना अस्तित्व में है उस सबका बीज, मूल बीज मुझसे सब प्रकट होता है, भगवान बोलते वो मैं हूँ। फिर बुद्धियों का बुद्धि और शक्तिशालियों का शक्ति, वो मेरे कारण होता है। जैसे बुद्धिमान लोगों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन बुद्धि बनाने वाला तो भगवान है। जैसे आप कहोगे कि आज नरेंद्र मोदी बहुत बुद्धिशाली, फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है, इनकेस अगर नरेंद्र मोदी बुद्धिमान है तो उसकी बुद्धि देने वाला कौन है? अगर कोई आइंस्टाइन बहुत बड़ा विद्वान था, बुद्धिमान था, तो उसको बुद्धि देने वाला कौन है? भगवान है। तो बुद्धियों की बुद्धि भगवान है, समझ लो। शक्तिमान का शक्ति वो है, जब शक्तिमान तो आजकल कोई बचा नहीं है इतना कोई खास, वो शक्तिमान की बात नहीं कर रहा है। जो शक्तिशाली लोग होते हैं, है ऐसे भी शक्तिशाली, लेकिन पहले के समय में जो शक्ति होती थी 10,000 हाथी का बल होता था दुर्योधन के पास, ये भीम के पास, तो इस प्रकार के शक्तिशाली लोग का जो शक्ति है वो भी भगवान बोलते हैं मैं हूँ। फिर 11 नंबर,
मैं भगवान का कामना हो तथा इच्छा से रहित बल हूँ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है।
यस, मैं एक बार तो भगवान ने बताया पावरफुल का पावर मैं हूँ, लेकिन यहाँ पर भगवान ने बताया कि डिवॉइड ऑफ पैशन एंड डिजायर, इच्छा से जिसके पास शक्ति है, लेकिन अगर वो शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है, तो जो दुरुपयोग में की जाने वाली शक्ति है वो मैं नहीं हूँ। अर्थात जो पैशन और डिजायर, जनरली क्या शक्तिशाली कोई होता है तो बहुत पैशनेट होता है और उसकी इच्छा तीव्र होती है और उसको रोक नहीं सकता कोई, शक्तिशाली है तो वो शक्ति नहीं। भगवान बोलते कि आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रांग डिवॉइड ऑफ पैशन एंड डिजायर, तो इस प्रकार से, और आई एम द सेक्स लाइफ विच इज नॉट कॉन्ट्रारी टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो यहां पर भगवान ये भी बताते हैं कि संतान उत्पत्ति करने के लिए, कृष्ण भक्त उत्पत्ति करने के लिए जो जातीय जीवन होता है संबंध, वो भगवान बोलते वो मैं हूं, अर्थात वो पवित्र माना गया है, वो पवित्र है, नहीं तो भगवान उसकी सृष्टि क्यों करते? रचना तो भगवान ने बनाई है ना, तो क्यों करते? लेकिन इसका उद्देश्य यही है। समरी 12 नंबर में समरी है, यहां पर डिस्क्रिप्शन का एंड आता है।
तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अभी तो वे मेरे अधीन हैं।
तो फिर भगवान ने बता दिया समरी के रूप में कि तीन गुण जो है, कोई लोग जनरली प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये सब जगह बता, स्वाद मैं हूँ, अग्नि में ये मैं हूँ, भगवान सब बताया, तो फिर भगवान को लोग देख क्यों नहीं पाते, समझ क्यों नहीं पाते, क्यों नहीं समझ पाते लोग? भगवान ने कहा कि लोग तीन गुणों के द्वारा मोहित होते हैं। यहाँ पर क्या बताया, नो दैट ऑल स्टेट ऑफ बीइंग बी देगा, ये तीन गुण जो है आर मैनिफेस्टेड बाय माय एनर्जी, वो मेरे कारण है। तो एक रूप से देखा जाए तो सारा संचालन ये कठपुतली की तरह होता है और भगवान के द्वारा बनाए गए तीन गुण ये उसको हम सबको नचाते हैं। और आई एम इन वन सेंस एवरीथिंग, इसलिए फिर भी भगवान बोलते मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है कि ये जो तीन गुण जो है उसको मैं कंट्रोल करता हूं, वो मुझे कंट्रोल नहीं कर रहे, वो कंट्रोल नहीं कर सकते मुझे। राजा नियम बनाते हैं, ना कि नियम राजा को बनाता है। आई एम नॉट अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, बता दिया साफ, मैं प्रकृति के तीन गुणों के भीतर नहीं हूं, मैं इसके ऊपर हूं। राधर ऑन द कॉन्ट्रारी दे आर विथिन मी, वो लोग ये मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। ये तीन गुण जो है उसकी रचना मैंने की है और इसके कारण सब लोग, सबका संचालन हो रहा है, सबका कंट्रोल हो रहा है, लेकिन वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति कहे, मायावादी लोग, कि भगवान तीन गुणों के अंतर्गत आते हैं, तो ये श्लोक आप बता सकते हो। देखो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि तीन गुण में मैं उसमें नहीं हूँ, वो मुझ में है, मैं स्वतंत्र हूँ और मैं इससे पर हूँ, स्पष्ट भगवान बता दिए। और तेरा जो है उसमें भगवान बताते हैं
गुणों तत्व रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता।
हाँ, तो किसी में प्रश्न पूछ सकता है कोई कि अच्छा तो ये तीन गुण के कारण भगवान कंट्रोल करते हैं, तो भगवान यहाँ पर साफ बताया कि ये तीन गुण के कारण लोग नहीं जान पाते मुझे। ये तीन गुण ऐसे हैं जो हमें मोहित कर देते, जैसे वो सोचता है कि मैं अगर तीन गुण के अंतर्गत हूँ तो फिर भगवान भी तीन गुण के अंतर्गत होना चाहिए, मुझ में और भगवान में नहीं अंतर होना चाहिए। तो इस तरह से वो लोग भगवान को प्रॉपरली समझ नहीं पाते। और इस तरह से फिर चार वर्ण बनते हैं, क्योंकि तीन गुणों के अंतर्गत है सब लोग, कोई सत्वगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, और जनरली वो शरीर की भावना में से ग्रस्त हो जाते तीन गुण से, वो भगवान को नहीं समझ पाते। अच्छा, तो भगवान को नहीं समझ पाते तो कौन समझ सकता है फिर भगवान को? अगर प्रकृति के तीन गुण जो है वो इतने हैवी है, इतने प्रभावी है, इतने बलशाली है कि उससे सारा जगत मोहित है, तो फिर कोई ऐसा भी है क्या कि आपको समझ सकता है? फिर ये तीन गुण तो फिर मुश्किल है, क्या किया जाए? भगवान बोले इसका रास्ता भी है, नेक्स्ट श्लोक में बताया इसका रास्ता क्या है।
प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार करना कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं।
हाँ अर्जुन, तुम्हारी बात सही है कि बहुत मुश्किल है, देवी ऐसा गुणमयी। अच्छा, ये गुणमयी जो प्रकृति जो है माया बहिर्गंगा शक्ति जो तीन गुण से बनी है, वो भगवान बताते हैं मम माया, मेरी माया है। मेरी माया का अर्थ होता है कि इसलिए वो देवी है, नहीं तो नहीं देवी थी, भगवान के साथ जुड़ी हुई है इसलिए इसको देवी बोला गया है। देवी ऐसा गुणमयी, देवी मीन्स गॉडली डिवाइन, यू नो इसमें क्या डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड, तो डिवाइन कैसे हो गई ये एनर्जी? क्योंकि वो भगवान की है, इसलिए भगवान के साथ जुड़ा हुआ ये प्रकृति। तो ये गुणमयी माया जो है वो मेरी है, भगवान कहते हैं माया दुरत्याया, इसको पार करना संभव है, कोई नहीं कर सकता इसको पार। बड़े बड़े ऋषि ले आओ, कोई बड़े बड़े तपस्वी ले आओ, त्यागी ले आओ, कोई इस माया से तीन गुणों से मुक्त नहीं हो सकता। अरे कोई नहीं हो सकता, कोई तो उपाय होना चाहिए ना, कोई नहीं हो सकता, बड़ी संभव है, इसको पार करना मुश्किल नहीं है, संभव ही है बिल्कुल, देयर इज नो अदर वे। तो फिर क्या करे? एक उपाय है, क्या उपाय? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आता है मायामेताम, मामेव ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, न कौन बलदेव विद्याभूषण, न विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जब भगवान बताया मामेव तो भगवान अपने छाती ठोक कर बता रहे थे मामेव ये मावे ये प्रपद्यन्ते माया वेदा, मैं हूं ना इधर, मामेव ये प्रपद्यन्ते मेरे, माम एव मेरे अकेले को और किसी को नहीं, देवताओं के पास जाएगा तो मरेगा, तो नहीं हो पाएगा तुम्हारा ये। इसी अध्याय में बताते भगवान आगे देवताओं के पास, माम एव केवल मुझे, मुझे ही और कोई नहीं, और तुम निराकार के पास जाएगा तो भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तो नहीं कर पाएगा किसी के, और कोई ना, और कोई नहीं, शिव जी का पूजा अच्छा मैं शिवरात्रि किया वो करूंगा, नहीं करूंगा या तपस्या करूंगा शिव जी का, ये ना शिव जी का भी नहीं हो पाएगा, ब्रह्मा जी ना, नारद जी ना, इंद्र चंद्र अरुण अंबा दुर्गा चेहर ना, कोई नहीं, कोई नहीं। किसी का भी बात है माम एव और कोई नहीं, ये प्रपद्यन्ते मायामेतम। तो भगवान बोलते हैं फिर मैं माया को आदेश दे देता हूँ, सरकारी कुत्ता है ये, इसको छूना नहीं, यू नो, ये सरकारी कुत्ता है, ये होते हैं ना कंठी, वो सरकारी कुत्ता है ये, मैं जो सरकार के पुलिस के या आर्मी के पास जो होता है ना डॉग, तो वो पट्टा उसके हाथ में होता है सरकार के हाथ, वो एकदम जैसे आर्मी को जैसे रिस्पेक्ट करते हैं ना लोग, वैसे उसका जो कुत्ता आता है उसको भी उसके लिए भी रास्ता करना पड़ता है, यस सर आप जाइए। क्यों? क्योंकि उसको अथॉरिटी दी गई है, उसमें रैंक होता है। अच्छा, तो सरकारी कुत्ता है, इसलिए भगवान जो भी कंठी धारण किए है वो लोग भगवान के द्वारा बंधे गए है, या भगवान के द्वारा अप्रूव्ड है, या स्टैंप लगा हुआ है विष्णु तिलक का इधर, तो कोई यमराज उसको नहीं आ रहा, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन के बाहर चला गया ये। सो माया में तम तरंती थे, केवल वही है, गुण शब्द का अर्थ रस्सी भी होता है, गुण बोलते हैं ना, गुण गुण से बांध दिया रस्सी, लेकिन ये तीन गुण है, यहाँ पर एक नहीं है, तो तीन गुण रस्सी को, अगर बहुत सारी रस्सियां एक साथ एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक साथ बांध दिया जाए तो उसको फिर काट तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, टूट नहीं सकता वो, एक धागा है तो तोड़ सकते हो, लेकिन बहुत सारे धागे इकट्ठा हो जाते तो रस्सी बन जाती है, तो रस्सी टूट नहीं सकती। इस तरह से भगवान की माया उसको तोड़ी नहीं जा सकती, उसको आप कितना भी, मैं कई बार बताता हूँ इस ये चीज को, कि आप समझ लो कि जो लोग सोलह माला जप करते हैं, भगवत गीता भागवत पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, चरणों का पालन करते हैं, इसको उनके साथ जुड़े हुए भक्ति मार्ग में जुड़ गए हैं, ऐसे लोग को भी अगर माया आकर्षित करती हो तो जो ये लोग नहीं करते, अगर ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े नेता हो, धर्मात्मा हो, बापू हो, भोगी जोगी जो भी हो, लेकिन ये नहीं करते इस सब का पालन, तो उसका तो माया क्या करती होगी, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। फिर आपको ये, अरे बाबा प्रभु जी आपने सुना क्या, अरे वो बापू तो कैसा पाखंडी निकला, तो उसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य, ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल माया उसका प्रभाव तो करेगी। अभी कल मैं आज सुबह न्यूज में कहीं पर देखा कि हल्ला हो गया कहीं शहर में, कहीं पर एक साधु था, उसने कुछ उसके गलत काम बाहर आ गए तो उसको पकड़ के ले गए, तो चर्चा का विषय बन गया, भाई ठीक है मीडिया वालों के लिए मसाला आ गया, लेकिन ये तो स्वाभाविक है, माया दुरत्य या ये पार ही नहीं हो सकती। ऐसे समुन्द्र में एक बहुत बड़ा समुन्द्र हो, वत्स पदम श्लोक, आई फॉरगॉट द फर्स्ट लाइन, भवाम बुधिर यस पद पल्लव प्लवम यशो मुरारे, इसमें है क्या तात्पर्य, में आई फॉरगॉट दैट,
समाश्रिता
ये पद पल्लव प्लवम, ये यहाँ ये श्रीमद भागवत में लिखा है कि समझ लो, ऐसा मान लीजिए कि एक इतना बड़ा सागर है, अगर कोई कुत्ता सोचता है कितना बड़ा है, यहाँ से अमेरिका, आप लोग प्लेन का खर्चा करते हो ये वगैरह क्या क्या पर तैर के चले जाएंगे उसमें क्या है, पैसिफिक या अटलांटिक, कौन सा ओसन अमेरिका, अटलांटिक ओसन, तो उसको क्रॉस कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कुत्ता अगर ही सोचता है मैं तैर के क्रॉस कर दूंगा तो कर सकता है, कोई सबसे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अगर कोई तैरने वाला आप उठा के लेके आ जाओ, उसको बोलो कि भैया तू यहाँ से, अरे अमेरिका तो छोड़ो, यहाँ से तो स्वीडन का ही चला जा, तैर करके जा पाएगा, कोई समुद्र को पार कर सकता है, समुद्र को कोई पार है, तैर के पार नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भाव सागर जो है उसके लिए भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है या मेरे भक्त बनता है, मुझे शरणागत होता है, वो व्यक्ति के लिए ये भाव सागर जो होता है वो पहले तो मेरे चरण की नौका में बैठ गया, वो जैसे वो मेरे चरण की नौका में बैठता है, ये नौका अद्भुत है, जैसे इस नौका के अंदर कोई बैठता है करने के लिए समुद्र पार करने के लिए, बैठने के बाद तुरंत जो समुद्र होता है वो वत्स पदम, गाय के बछड़े की जो पैर की जो खुरी होती है उतना समुद्र बन जाता है, वो बोलते हैं कि चलो हम समुद्र पार करेंगे, हो गया पार, हाँ पार हो गया इतनी देर में, हाँ हो गया, कैसे हो गया, बोला अभी तो मैं बैठा था इसी किनारे पे बैठा था। हाँ लेकिन समुद्र ही छोटा कर दिया, नौका को चलाना नहीं पड़ा, समुद्र ही छोटा हो गया, तो आपका समुद्र पार हो गया, एक सेकंड में पार हो गया। अच्छा तो फिर समुद्र छोटा क्यों हुआ? समुद्र छोटा इसलिए हुआ क्योंकि ये नौका एक ही है, ये आने जाने का काम नहीं करती है, ये इतनी शक्तिशाली नौका है कि समुद्र छोटा कर देती है। यस
नौका बहुत बड़ी है, समुद्र बहुत छोटा
है। यस भगवान के चरण का जो नौका है वो बहुत बड़ा है, समुद्र उसके सामने छोटा है, लेकिन साधारण दृष्टिकोण से ऐसा कहीं आचार्य का मानना है क्योंकि वो नौका को इधर फिर से वापस ना आना पड़े हमारा उद्धार करने के लिए, इसलिए नौका इधर ही रहती है, नौका कहीं नहीं जाती, समुद्र छोटा होता है। तो इसलिए जो भगवान के चरण का आश्रय रहता है उसको माया भगवान कहते को उसको छू भी नहीं सकती। प्रभुपाद चैलेंज किए थे माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ हम तो बोलेंगे तो उसी दिन खत्म हो जाएंगे।
प्रभाव पड़ जाएगा,
इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना कि माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन हाँ अगर कृष्ण के चरण आप हमेशा अपने पास रखते हो तो माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मेरा इच्छा था आगे 15 और 16 2, लेकिन ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको नेक्स्ट टाइम पढ़ाए। चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं और चार प्रकार के लोग नहीं आते, तो नेक्स्ट टाइम हम छोटा सा ड्रामा भी करेंगे। सो स्टॉप हियर।